हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। निवेदिता ने कमरे में आकर जैसे ही देखा वेदांत किस कदर विवाह पर गुस्सा कर रहा था, वो घबराते हुए उसके पास आई और वेदांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहां से दूर करते हुए बोली, वेदांत क्या कर रहे हो तुम? बच्ची है वो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसे तुमसे डर लग रहा है? वेदांत ने गुस्से से कहा, मॉम इसकी भोली शक्ल पर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी कारनामे सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस कदर ड्रामेबाज लड़की है। कसम से जब से मेरी जिंदगी में आई है मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ इसकी वजह से, और इसे सब कुछ मजाक लगता है। पता है मेरे सामने बेहोश होने का नाटक कर रही थी, मेरी जान हलक में आ गई थी ये सोचकर कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। और ये इतना बोलकर वेदांत ने अपने जबड़े कस लिए, जिसे देखकर विहा जल्दी से सोफे से उठकर निवेदिता के गले लगते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सासू माँ, आपके बेटे को क्या खाकर पैदा किया था आपने, बहुत गुस्सा करते हैं। निवेदिता ने प्यार से विहा की पीठ सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ बच्चा, रोते नहीं हैं। फिर उसने वेदांत को आंखें दिखाते हुए कहा, हद होती है वेदांत, ये तो बच्ची है, समझ आता है, पर तुम्हें क्या हो गया है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हो सकता है ना इसकी तबीयत खराब हुई हो, इसे चक्कर आए हों और ये तुझसे ही डर के बेहोश हो गई हो। विहा को बहुत अच्छा लग रहा था निवेदिता का वेदांत को इस तरीके से डांटना। विहा अपनी पकड़ निवेदिता पर और भी ज्यादा मजबूत करते हुए बोली, प्लीज सासू माँ, आज मुझे आपके साथ रहना है और रात को भी मुझे इस कमरे में नहीं सोना है, आपका बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, आप बहुत अच्छी हैं तो मेरा आपके साथ ही मन लगता है। विहा को अच्छे से पता था अगर वो इस वक्त वेदांत के साथ रहेगी तो वेदांत उसे बहुत सुनाएगा और हो सकता है एक दो थप्पड़ भी लगा दे, क्योंकि उसने गलती ही ऐसी की थी, इसलिए वो अपने बचाव के तरीके सबसे पहले ढूंढ रही थी ताकि वेदांत को ऐसा मौका ही ना मिले। इस बात पर निवेदिता का दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था, उसने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर हल्की आवाज में कहा, वेदांत मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। वेदांत ने कुछ कहना चाहा पर निवेदिता ने उसके बिना कुछ कहे ही विहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई। वेदांत बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उनके जाने के बाद वेदांत ने सामने पड़ी टेबल पर एक लात मारते हुए कहा, लिटिल तुमने अच्छा नहीं किया है, माना तुम्हारी बात का मतलब वो नहीं था, पर मॉम को क्या लग रहा है, वो मुझे किस नज़र से देख रही है, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं, और मैं नहीं चाहता किसी और की वजह से मेरे कैरेक्टर को कोई भी गलत नजरिया से देखे, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। वेदांत अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांस लेकर बस कमरे में घूम रहा था कि तभी निवेदिता वापस आई। उसे वापस आता देखकर वेदांत जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, मॉम प्लीज पहले मेरी बात सुनो, आप जैसा सोच रही हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही निवेदिता ने गुस्से में कहा, वेदांत मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या तुम उस बच्ची को फिजिकली इतना तंग करते हो कि वो रात को तुम्हारे पास सोने से डर रही है? वेदांत ने आंखें बड़ी करके कहा, मुझे पता ही था कि आप यही सोच रही हैं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया है, वो आपसे झूठ बोल रही है, उसके परेशान करने का मतलब है कि मैं उसे ऑर्डर देता हूँ, जैसे पढ़ने के लिए बोलना या फिर अपना बचपना सुधारने के लिए बोलना, इससे ज्यादा हमारे बीच बातें भी नहीं होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम, मैं इतना गिरा हुआ बेटा तो नहीं हूँ आपका। निवेदिता ने पलके झपकाते हुए कहा, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है और वो बहुत मासूम है, तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो, दिल की बहुत अच्छी लड़की है वो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तुम उससे नरमी से पेश आया करो। वेदांत ने गुस्से में कहा, मॉम ये बोल बोलकर आपने मुझे रूहान को भी कुछ नहीं कहने दिया, आज उसका नतीजा आपके सामने है, मैं विहा को वैसा नहीं बनने दूंगा, वो बच्ची है तो मैं उसे ऐसी एजुकेशन देना चाहता हूँ जिससे वो समझदार बने, ना कि उसका ये बचपना दिन ब दिन बढ़ता ही जाए, अभी वो बिल्कुल किसी कच्ची मिट्टी की बुढ़िया की तरह है, उसको हम जैसा बनाएंगे वो वैसा बन जाएगी, पर आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी और मैं उस दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, उसने अपनी टीनेज से निकलकर अडल्ट में कदम रखे हैं, तो आप इस मैटर में दखल अंदाजी मत दीजिए, वही मुझे सही लगता है, बाकी आप उसकी सासू माँ हैं, उसका ख्याल रखना आपका फर्ज है, आपको जहाँ लगे कि मैं उसको ज्यादा परेशान कर रहा हूँ आप उसके लिए स्टैंड ले सकती हैं, पर मुझे उससे दूर नहीं कर सकती हैं, वो रहेगी तो मेरे पास ही। वेदांत बिना निवेदिता की बात सुने वहां से अपने कपबोर्ड की तरफ गया और हल्के कपड़े लेते हुए वॉशरूम में चला गया। निवेदिता ने गहरी सांस छोड़ी और फिर वापस किचन में चली गई ताकि विहा के लिए कुछ अच्छा ले जा सके। वहीं विहा निवेदिता के कमरे की बालकनी में बैठी थी। उसे अभी हल्का डर लग रहा था वेदांत से, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी वो कि आखिरकार उसने अपने पतिदेव को परेशान कर ही दिया, उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में अनाही एक हाथ से कीबोर्ड संभाल रही थी तो वहीं दूसरे हाथ में उसने फोन पकड़ रखा था जिससे वो काशी से बातें कर रही थी। काशी उसे खुश होते हुए बता रही थी कि विहा और वेदांत आए थे तब उसने क्या क्या तैयारी की थी और उसने विहा को क्या क्या गिफ्ट दिया था। हाँ, उन बातों में इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था कि अनाही अपना काम छोड़कर उनकी बातों को सुने, लेकिन काशी के पास उसके अलावा सुनने वाला कोई नहीं था, ये अनाही को बखूबी पता था। इसलिए वो बस शांति से हर बात सुन रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो भी हर बात का उतने ही एक्साइटमेंट के साथ जवाब दे पाए जितने एक्साइटमेंट में काशी उसे बता रही थी, क्योंकि अब उनके घर में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें संभालने वाला था। अनाही अब भी अपनी फैमिली को अपनी ही जिम्मेदारी समझती थी। काशी की बात खत्म होने पर अनाही ने कहा, माँ मैं क्या सोच रही हूँ, तुम और पापा गुजरात क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो? यहाँ मैं पापा को कंपनी में ही जॉब करने के लिए कहूंगी, क्योंकि खेत में तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है और आप दोनों अकेले ही परेशान हो रहे हो। इतनी तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है हमारी जिसके लिए आप वहाँ रहो। काशी ने जल्दी से उसे इनकार करते हुए कहा, तुम्हारे पापा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, आइंदा ऐसा मत कहना। जब तक हमारे हाथ पाँव सलामत है हम अपने खेत में काम करेंगे, उसके बाद जैसे रूहान की मर्जी। अनाही ने भी उनसे कोई बहस नहीं की। देखते ही देखते पूरा दिन ढल गया और जब अनाही वापस घर के लिए निकली तो उसे याद आया आज वेदांत नहीं था, उसे रूहान के साथ घर जाना पड़ेगा। रूहान पहले से गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनाही बेमन से ही सही पर रूहान के बगल में जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही रूहान ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। अनाही ने एक नज़र रूहान को देखा जिसका चेहरा आज मुरझाया हुआ था, जिसकी वजह शायद खुद अनाही भी हो सकती थी या रूहान का काम में दिल न लग रहा हो, ये भी हो सकता था। साथ ही अनाही को लग रहा था शायद उसने आज रूहान को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। पर अनाही की आदत नहीं थी हर बात में एक्सप्लेनेशन देने की, तो उसने धीरे से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिसबिहेव, शायद मुझे इतना नहीं बोलना था।
रूहान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सॉरी वाली क्या बात है, अपने लिए स्टैंड लेना कहीं से भी ज्यादा बोलना नहीं होता है। पर मेरी डाइवोर्स वाली बात याद रखना मैडम जी, आप कहेंगी तो कल मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर लॉयर से बात करूंगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आप रोज रोज मुझसे डरे या मुझ पर कोई भी गंदा इल्जाम लगाए। आपके लिए वो बहुत छोटी बात है पर मेरे लिए नहीं है। अनाही ने हैरानी से रूहान को देखा, उसे नहीं पता था लड़के भी इतने जज्बाती हो सकते हैं। उसने तो अपने आसपास की लड़कियों को ही इस तरीके से बिहेव करते देखा था, पर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो खामोश रही, ना उसने हाँ कहा और ना उसने मना किया। रूहान जो उसकी नाक का इंतजार कर रहा था, उसका दिल एक बार फिर उदासी से भर गया और उसने गाड़ी का गियर बदलते हुए और भी स्पीड बढ़ा ली। शायद अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, पर अनाही को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बस कुछ पल शांति से सांस लेना चाहती थी।